अज्ञानतिमिरान्धस्या ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपकदामायं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरं वैष्णवांश्च जगन्नाथ जी का बोलते हैं। टाइम कम है ना, हिंदी वाला रखो यहाँ पर। हाँ, हिंदी वाला रखो यहाँ। श्री रूपम सागर जातम सहगना रघुनाथम मितम तम सजीवम सात्वैतम सावधूतम परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देव राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितंस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपी का कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुव्यस्य कृपासिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सारे बोलो हाथ खड़े करके ऊपर, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्टकी।
ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராம், ஹரே ராம், ராம் ராம், ஹரே ஹரே. போலோ ஜகத்குரு சில பிரபுபாத கீத ஸ்ரீ ராதாராஸ் விஹாரி கீத. Somebody is translating in English. Please don't mind. Mere pyare Hari Bhakto, Ma Matao, aap sabka subah ke is Bhagavat Pravachan mein swagat hai. Mere dimag se baat nikli hai, kal Rath Yatra kal hai. तीन को चार है, चार को कल रथ यात्रा है, तीन आज है. तो मुझे श्रीमान असीम कृष्ण जी ने कहा कि मैंने भागवत मांगा कि आप जगन्नाथ जी पर बोलोगे. मुझे एकदम ध्यान में आ गया कि जगन्नाथ जी जगत के नाथ बड़ी कृपा करके यहां भी पधारे हैं. दया के सागर हैं, प्रभुपाद कृपा से, गौर नेता की कृपा से, उनके दिव्य जीवन चरित्र के बारे में कुछ बोलने का प्रयास किया जाएगा. मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, ये जो आप स्वरूप देखते हैं, बड़ी बड़ी आंखें भगवान की, हाथ पांव है ही नहीं, हाथ हैं ऐसे बाजू हैं पर हाथ नहीं है. और यशोदा मैया तो ऐसी ही है कि हाथ पांव है ही नहीं. ऐसे क्यों है भगवान? ये वृंदावन के भाव के स्वरूप है. वृंदावन का ये भाव है. जब भगवान द्वारका लीला में थे तो उस समय भगवान की रानिये, भटरानिये, रुक्मिणी माता सभी रोहिणी माता से कहती थी, आप हमें वृंदावन के विषय में कुछ बताओ. हमारे स्वामी रात को सोए सोए, हा वृंदावन, हा राधे, हा नंद बाबा, ब्रिज को बड़ा याद करते हैं और भाव भी बोल हो जाते हैं. कई बार भगवान रो पड़ते. ऐसी वृंदावन में क्या विशेषता थी? रोहिणी माता को बार बार कहने से, रोहिणी माता भी ब्रिज में थी, उन्होंने कहा कि मैं सुनाती हूं, पर अगर वो कभी दोनों यहां आ गए ना तो फिर वो यहां नहीं रहेंगे, वृंदावन चले जाएंगे. सब भगवान को अपने पास रखना चाहते हैं. मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, इस बात को याद रखो, सबसे ऊंचा भाव जो है ना, वो वृंदावन का भाव, ब्रजवासियों का भगवान के प्रति जो भाव प्रेम था, सबसे ऊंचा उसको कहा गया है. और एक वैसे वो हिंदी में कहते हैं ना कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई. प्रेम के वशीभूत होकर भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं. और ये जो प्रेम है, ये भगवान का स्वरूप है. भगवान प्रेम के वशीभूत होकर ही अपने भक्तों को मिलते हैं. ऐसे भगवान के दर्शन नहीं होते. जब हमारे अंदर प्रेम जागृत होगा तब हमें भगवान मिलेंगे. जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति भाव जागृत होगा तब हमें भगवान मिलेंगे. नहीं तो हम लोग आवागमन में चले जाएंगे, चुरासी के चक्कर में चले जाएंगे। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, इस बात को हम सबको ध्यान में रखना चाहिए, अगर इस जीवन में मेरा श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, मेरा विषय विकारों से, संसार से, परिवार से, धन संपत्ति से या किसी भी भौतिक चीज से मेरा अगर प्रेम रहा, तो मुझे आवागमन में जाना पड़ेगा, चुरासी के चक्कर में जाना पड़ेगा और बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। ये सब ध्यान रखो। भगवान तो कृपा करके हम सबका उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं, समय समय पे आते हैं, ताकि हम लोगों का आवागमन छूटे, उनके श्री चरणों में प्रेम उत्पन्न हो। लेकिन मैं इतना पतित जीव हूं, ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर उनकी ठगनी माया के पीछे पड़ा हुआ हूं, ये मेरा दुर्भाग्य है। मेरा दुर्भाग्य सौभाग्य में तब बदलेगा जब मेरा प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में हो जाएगा। एक बड़ा जोखिम है, बड़ा रिस्की काम है। आज हम सब बड़े रिस्की हो चुके हैं, मेरा मन इतना रिस्की हो चुका है कि कभी मुझे ये धोखा दे देगा और आवागमन में ले जाएगा। तो भगवान ने अपने मुखारविंद से भी ये कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार, भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भव से बेड़ा पार तब होगा जब भाव से श्री कृष्ण का, राधा कृपा से और उनके स्वरूप गौरांग कृपा से, नित्यानंद द्वैताचार्य का दादार छठ गोस्वामी, पूरी गुरु परंपरा की कृपा से, प्रभुपाद कृपा से, जब हम भाव से उनका भजन करेंगे। जैसे जैसे कलियुग की आयु बढ़ती जा रही है, हमारे मनों की गंदगी बढ़ती जा रही है, मेरा मन और गंदा होता जा रहा है और इस संसार से, दुख रूपी संसार से लिप्त होता जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो रोहिणी माता को बार बार कह रहे हैं द्वारकावासी, विशेष करके द्वारका की महिषी हैं, रानी है, पटरानी है। तो रोहिणी माता कहती हैं, अच्छा ऐसे करो फिर, द्वार पर किसी को बैठा दो, सुभद्रा जी वहां थी, सुभद्रा जी को आदेश हुआ वहां बैठो, किसी को अंदर नहीं आने देना। तो सुभद्रा माता बैठ गई बहन भगवान कृष्ण और बलराम की। जब वो बैठ गई वहां पर, तो भगवान एक असेंबली में थे, वहां पर भगवान कोई गोष्ठी कर रहे थे। तो भगवान से क्या छुपा है, वो जो जैसे कुंती माता ने कहा ना, अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बाहर अवस्थिति, आप सब जीवों को जानते हो लेकिन हे कृष्ण आपको कोई नहीं जानता, आप सबके अंदर बाहर की सबकी गति को जानते हो। कुंती माता जो बुआ थी भगवान की, रिश्ते में उनमें बड़ी है लेकिन उन्होंने कभी उनको अपना भतीजा नहीं माना, सदा भगवान समझा और उनके चरणों में कुंती माता का बहुत ही स्नेह था, पांडवों का, कुंती माता का, द्रौपदी माता का। तो अंदर सारी रानी पटरानी बैठ गईं और रोहिणी माता बता रही हैं ब्रज की लीला, ब्रज में भगवान क्या क्या करते थे। तो भगवान को तो पता लग गया वहां पर के ब्रज की कथा हो रही है। असेंबली छोड़कर भगवान आ गए तो जसोदा मैया उनकी बहन बहन जसोदा खड़ी हो गई हाथ ऐसे करके, नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, अनुमति नहीं है, रोहिणी माता की अनुमति नहीं है अंदर जाने की। तीनों वहां खड़े हैं, कृष्ण बलराम और बहन सुभद्रा। जो लीला अंदर चल रही है बाहर भी सुनाई दे रही है। तीनों ने वो लीला सुनी और इन स्वरूपों को प्राप्त हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि उनके अंग अंदर चले गए, आंखें खुली खुली रह गई, बड़ी बड़ी आंखें। यशोदा जी की तो हालत है, उनके अंग सारे आजू भी अंदर चले गए, हाथ तो क्या जाने थे, इतनी भावुक हो गई यशोदा माता, आया क्षमा करिए सुभद्रा माता। तो इतनी देर में क्या हुआ, नारद जी महाराज आ गए, देवऋषि नारद जी पधारे। तो भगवान कृष्ण ने जब नारद जी को देखा, एकदम भाव को संपन्न कर लिया, तो नारद जी नाचने लगे, मैंने देख लिया। आके भगवान के चरणों में गिर गए, कहते हैं हे कृष्ण, आपके अनेकों रूप हैं, लेकिन ये जो रूप आपके बन गए थे ना भी, ये मुझे बहुत अच्छे लगे, भाव के स्वरूप है ना प्रभु, मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूं। भगवान कहते हैं देव ऋषि मांगो, क्या वर चाहिए आपको, मुझे आप ये वर दो कि आप कलयुग के लोगों पर इन स्वरूपों से कृपा करोगे। देखो भक्त कैसे होते हैं, हम तो स्वार्थी जीव हैं, मुझे अपने लिए चाहिए, धन चाहिए, बहुत सारे अनुयायी चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, बहुत बड़ा प्रवक्ता बनना है, हैं? लेकिन अपना जो शुद्ध भक्त है भगवान के, वो अपने लिए कुछ नहीं मानते, ये भक्तों का स्वरूप है। भक्त अपने लिए कुछ नहीं मांगते, भक्त जो है सीधा पतितों का कल्याण चाहते हैं, पतितों को पावन करते हैं। अब भगवान ने बर दिए थे, अपने भक्तों को जो भगवान कहते हैं वो तो पूरा करना ही पड़ता है ना, और करते भी हैं, ये नहीं है कि भगवान ने कहा और किया नहीं, हम लोग कहते हैं पर करते नहीं, हमारी कथनी और करने में अंतर है। लेकिन भगवान और हम में यही भेद है, वो जो कहते हैं वही करते हैं। जैसे भगवान है कि रामायण में रघुकुल रीत सदा चली आई, क्या प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल की रीत क्या है, प्राण चले जाए लेकिन जो वचन दिया उसको पूरा करेंगे। लेकिन हमारे कुल की भी रीत ये चली आई, वचन जाए पर प्राण न जाए। कैसे भगवान मिलेंगे, हम सबको वचनबद्ध होना चाहिए, पर भक्तों को तो होना ही चाहिए, भक्त क्या कहे कुछ और करे कुछ। तो भगवान ने वही बात पूरी करने के लिए अपने हाथ से ही ये स्वरूप तैयार किए थे। राजा इंद्रदुमन भगवान नील माधव से मिलना चाहते थे, नहीं मिल पाए, नहीं दर्शन हुए, इंद्रदुमन बड़े भक्त थे। तो फिर भगवान ने बताया था ऐसे ऐसे दारू के रूप में लकड़ी के रूप में मैं आऊंगा, शंख चक्र कटा पद्म के निशान होंगे, शिल्पी खुद ही भगवान बन के आए थे। बोला भाई तुम 21 दिन दरवाजा नहीं खोलेगा, 16 दिन हो गए, आवाज कम हो गई, शिल्पी है पता नहीं मर गया है। रानी कहने लगी महाराज इंद्रदुमन की कि महाराज वो शिल्पी तो मर गया होगा अंदर, कि नहीं नहीं वचन दिया है, कहते नहीं दरवाजा खोला शिल्पी शुल्पी कुछ नहीं था, ये स्वरूप खुद ही भगवान ने बनाया है स्वरूप ये। तो देखो भगवान के जीवों पर बहुत कृपा है। हम सब पर, मेरे पर आप, लेकिन मैं अपना शत्रु खुद ही बना हूं। कारण मुझे ऐसे दयालु भगवान नहीं चाहिए, मुझे उनकी ठगनी माया चाहिए। और माया तो इसने कितनों को ठग लिया और मैं भी ठगाने जा रहा हूं इसे। और माया के वशीभूत जो होगा उसकी तो दुर्गति हो जाएगी, सदगति थोड़ी है। माया, माया कहते जो नहीं है वो माया है। माया तो मेरे को बड़ा कष्ट भोगने के लिए बाध्य कर देगी, लेकिन मुझे ऐसे प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव की कृपा से ये सीखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि मैं कृष्ण की शरण में आऊं, जगन्नाथ जी की शरण में आऊं और अपना जीवन सफल बनाऊं। तो जगन्नाथ जी को कहा है भावग्राही दारू ब्रह्म। बोलो भावग्राही दारू ब्रह्म भगवान की। भावग्राही दारू ब्रह्म भगवान जो है उन्होंने ये दिव्य स्वरूप धारण किया है और इनके जीवन की बहुत सारी लीलाएं हैं। देखो ये नहीं है कलयुग में को कोई ब्राह्मण ही भगवान को पा सकता है, ब्राह्मण भी पा सकता है, कोई भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। भाव होना चाहिए, भाव जिसके अंदर होगा वो भगवान की प्राप्ति करेगा। तो कथा आती है जगन्नाथ जी की लीला में, दास्य भौरिया। दास्य भौरिया कौन थे? ये एक भील मतलब जंगली आदमी थे, अनपढ़ कुमार, जंगल में जैसे होते हैं ना ट्राइबल जिन्हें कह रहे, वो थे अनपढ़। ये और उनकी पत्नी बच्चे इनके थे नहीं, ये काम जुलाहे का करते थे, कपड़े कपड़ा बुनने का काम। तो बलिग्राम नाम का एक गांव जो पुरी से 2 किलोमीटर दूर है वहां ये रहते थे, 2 माइल वहां ये रहते थे। तो वहां के क्योंकि जगन्नाथ जी का प्रभाव तो प्रभुपाद कृपा से सारी दुनिया में आज चला गया है, तो पुरी के जो पुरी के 2 किलोमीटर उन पर तो बहुत पूरे उड़ीसा में जगन्नाथ स्वामी का प्रभाव है। तो ये जब कभी दासे भौरे जी कथा होती, कुछ जगह कीर्तन होता, वहां पर ये जाके सुनते थे। और ऐसा वर्णन आता है अनपढ़ गंवार, कुछ अच्छे बुरे का पता ही नहीं इनको, और बड़े जैसे कहते हैं अविद्या में ये थे, अपना ट्राइबल व्यक्ति हैं। तो इन्होंने क्या हुआ कि किसी से दीक्षा भी वहां ले ली, कंठी पहन ली। तो इनकी इच्छा हुई कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाऊं। दूसरों से सुनते थे जगन्नाथ भगवान के बारे में, मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाऊं। तो ये एक बार लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे, रथ यात्रा का समय था, ये भी चले गए। तो भगवान का जो रथ है नंदी घोष, उस रथ के पास खड़े हो गए, बड़े उत्सुक देखने के लिए कि भगवान आएंगे कैसे दिखते हैं, भगवान सर्वेश्वर ठाकुर कैसे दिखते हैं। भगवान को लाया गया रथ पर, आए तो देखा, दर्शन करके प्रणाम किया भगवान को इन्होंने, बड़े भावुक हो गए, सोचने लगे कि मैं एक जात का नीच हूं, पतित हूं, क्या मैं भी भगवान की भक्ति कर सकता हूं, या मुझ पर भी भगवान की कृपा होगी, अपने सोचने लगा अपने बारे में, मैं तो बड़ा अनपढ़ गंवार, जात का शूद्र नीच। लेकिन मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं क्या हुआ, भगवान के दर्शन किए इन्होंने, रथ यात्रा के बाद अपने गांव में वापस चले गए। जब दर्शनों के टाइम इन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मेरे पर आपकी कृपा कभी होगी, आप इस दीनहीन पर दया करोगे, अपने घर में जा। तो इनका जगना घर में जब वापस आए तो क्या हुआ, इनकी पत्नी भी भोली वाली अनपढ़, उसने मट्टी का बर्तन सबसे पवित्र होता है, मट्टी के बर्तन में चावल सफेद चावल और बीच में साग स्पिनच, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, जो भी कहेंगे, बीच में रखा हुआ। तो दासी बौरी जी ने जब देखा तो उनको ऐसे देखा जैसे जगन्नाथ भगवान के नेत्र, जगन्नाथ जी की आंखें, बाहर से लाल वो हंडिया, चावल सफेद और बीच में काले। तो वो उसके नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, रोने लगे, जगन्नाथ जी की स्मृति हो गई। देखो याद रखो भगवान किसको मिलते हैं, कथा से बहुत सीखना है। नृत्य करने लगे, नाचने लगे, पत्नी क्या समझे कि मेरे पति को क्या हो गया, कहीं कुछ गांव के लोगों को बुला के ले आई कि चलो देखो मेरे पति को क्या हो गया। वो कहती है मुझे ऐसा लगता है मेरे पति गए थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने, उन्हें वहां से किसी ने इनको जादू टूना कर दिया है और उसके प्रभाव से ही ऐसा हो रहा है। जब से ये जगन्नाथपुरी से आए तब से ऐसी बातें कर रहे हैं। गांव के लोग समझदार भी थे, देखा भाभी बोरों के नाच रहे हैं, रो रहे हैं। अस्से बोरिया जी तो पत्नी कहने पर लोग आए, उन्हें देखा तो एक कहता भाई इसके अंदर तो भाव जाकर तो। पूछा एक ने पूछा भाई ये आप क्यों ऐसे नाच रहे हो क्या, कहते देखो आपने ये भोजन क्यों नहीं किया, कहते देखो जगन्नाथ जी की आंखें हैं, मैं इसको कैसे भोजन कर सकता हूं। तो एक ने कहा भाई आपके अंदर ये इतना भाव कहां से आ गया, कहते वो जगन्नाथ भगवान की कृपा है। पत्नी को समझाया भाई अलग साग अलग कर, चावल अलग कर, जब दिया तो उन्होंने भोजन कर लिया, भोजन कर लिया। तो अभी कपड़ा बुनते थे, कपड़ा बुन के अभी एक ब्राह्मण के घर में गए तो वहां पर नारियल का पेड़ था, बहुत बड़ा नारियल का पेड़ था और नारियल के पेड़ पर बहुत बड़ा अच्छा नारियल लगा था। तो देखो भक्त क्या सोचता है, हमें सीखना है भक्तों से, भाई बहुत अच्छा नारियल है। पंडित को कहा पंडित जी कपड़ा मैं लाया हूं, ये नारियल मेरे को दे दो और इसकी जितनी कीमत हो कपड़े के पैसे मुझे कम देना, ये नारियल मुझे दे दो। और पंडित जी कितने महान लालची पंडित, ये शुद्ध और वो पंडित कलयुग में ही हो रहा है। पंडित जी कहते हैं नहीं एक कपड़ा पूरा कपड़ा तुमको उस नारियल के बदले में देना पड़े। उसी से उनकी जीविका चलती थी, कपड़ा भेजकर बेचारे का अच्छा नारियल ले लिया, नारियल ले लिया, पंडित जी ने दे दिया सारा कपड़ा रख लिया। आपके पैसे भी देने चाहिए थे, नहीं ये पंडित जी की महानता। कलयुग में ऐसे पंडित बहुत हैं, ऐसे ही ज्यादा हो गए। तो वैसे जन्म से कोई पंडित नहीं कलयुग में, कर्म से सभी बन सकते हैं। जन्मना जायते शूद्रा संस्कार दिजोत्मा वेद पाठी भवद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। जन्म से कब सभी शूद्र हैं, कर्म से कोई भी ब्राह्मण क्या ब्राह्मण से अच्छा बन सकता है, ब्राह्मण से अच्छा क्या है वैष्णव, वैष्णव सबका गुरु है। तो क्या होगा मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं के एक ब्राह्मण जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहा था, सब सामान सामग्री ये बहुत कुछ ले जा रहा था साथ में। तो दर्शन बौरिया जी कहते हैं उसको कि भाई आप जा रहे हैं, जब अपनी पूजा वगैरह कर लो जगन्नाथ जी की, कि मेरा नारियल भी भगवान को अर्पण कर देना। और जब अक्षय बोरे जी वापस आए थे तो भगवान ने उनको दर्शन दिए थे, कहा कि जब भी तुम हमें याद करोगे हम तुम्हारे पास आएंगे। इतनी कृपा भगवान की हो गई थी, और जो तुम हमें दोगे वो हम स्वीकार करेंगे। क्या हुआ, पंडित जी जा रहे थे, पंडित जी को कहा पंडित जी ये मेरा नारियल ले जाओ और गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर के भगवान जगन्नाथ जी को कहना कि आपके भक्त दस्य बौरी ने ये नारियल भेजा है, अगर भगवान हाथ से ले तो देना, ये तो वापस ले आना। पंडित जी हंसने लगे, क्या कह रहा है ये, नारी लेके आ गया पंडित, उसने अपनी पूजा जगन्नाथ जी की, जाने का टाइम तो उसको ध्यान में आया कि अच्छा देखते भला क्या होता है। उसने कहा था ऐसा, गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर पंडित जी कहते हैं हे जगन्नाथ स्वामी, आपके भक्त ने ये नारियल भेजा है, आप इसको अगर स्वीकार करो तो मैं दूं। झट जगन्नाथ जी का बड़ा लंबा हाथ आया और नारियल लेके वापस हो गया। ये देखा तो पंडित जी अवाक, इतना बड़ा भक्त वो, ये भगवान उसका नारियल स्वीकार कर लिया। पंडित जी कहते हैं भाई दस्य बौरिया तू धन्य है, तेरा परिवार धन्य, तेरे माता पिता धन्य, कि तेरे पर जगन्नाथ जी की इतनी कृपा जो हम पर कभी हुई ही नहीं। तो दस्य बौरिया जी जो है, एक बार आम बेचने वाला था, आम बेचने वाला जो है वह बहुत भी आम, तो क्योंकि हमें हर हालत में हर समय कृष्ण का जगन्नाथ जी का चिंतन करना चाहिए। जैसे गीता में भगवान ने कहा ना, रसो हम अपसु कौंतेया, हैं मैं जल का पानी का स्वाद हूं, मैं सूरज और चंद्रमा की रोशनी हूं, तो जब हम सूर्य देव को देखे कितनी, एक सूरज पूरी दुनिया को रोशनी कर रहा है, ये क्या है, ये भगवान प्रतीक है, भगवान से इनमें वो रोशनी आ रही है। पानी, पानी का स्वाद कितना अच्छा, किसी को प्यास लगी हो आदमी जो है पानी पीता तो बड़ा अच्छा लगता है, हम भगवान को याद कर सकते। तो भक्त हर समय भगवान को याद करता है। तो उस आम वाले को देख करके, आम वाले को देखा जब, तो बोला मैं जगन्नाथ जी के आम, उसे 40 आम ले लिए उन्होंने, बड़े बड़े बहुत बड़े आम, एक बास्केट में एक टोकरे में डाले और खुद ही सर पर उठाकर चल पड़े वैसे बौरिया जी जगन्नाथ की ओर, जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। जब सिंह द्वार पर पहुंचे वहां पर बहुत से पंडित आ गए कि लाओ लाओ हम तुम्हारे आम भोग लगा देंगे, लड़ने लगे पंडित अपने में। पुरी में देखो भाव के स्वरूप, पैसे के लिए तो बेचारे बड़े ही महान हैं वो, रख यहाँ पर पैसे रख, हमने जब दर्शन किए भगवान के बड़े निकट से, क्या रख, क्या रखता है, कितने रखा है, रख 500,000 रख, ये क्या रख रहा है। पंडित जी कह रहे थे पुजारी भगवान के ध्यान खाली कैसे में ही, क्या कलयुग है। तो जब बलदेव जी के पास आए, सुभद्रा माता के पास आए, साड़ी पहना दो, सुभद्रा माता के साड़ी के लिए पैसे दो, तो एक जो पंडित दर्शन कराने वाला था वो कहते कुछ कहते नहीं, बोलना नहीं, कुछ चुप रहना दी उसने हमको, जिस पंडित ने दर्शन कराए। बलराम जी के पास आए तो कहता है ये तो बड़े भाई हैं जगन्नाथ जी के, सब पैसे चलते, पैसे में ही ध्यान, कोई इनको सीधा करने वाला नहीं है, इनको मूर्खों को समझाया जाए। अरे जगत के नाथ सबको पालन कर रहे हैं, तुमको भूखा मारेंगे, उनके चरणों में श्रद्धा रखो। अच्छा देखो जो घर से जाता है ना, तो उसकी भावना अगर जागृत हो, अगर उसने 100 चढ़ाना होगा तो 500 चढ़ाएगा, अगर कोई 1000 की भावना लेके गया ना, जैसे वो बात करते हैं, तो 100 या 50 ही चढ़ाएगा, वहां पर भाव ही खत्म कर देते हैं। तो पंडे आ गए, अच्छा बस वो जो अपना सिंह द्वार और भगवान का जो शिखर है, जहां झंडा रोज चढ़ता है भगवान का, शंकर जी हैं, पीछे आकर के दास बोध जी ने कहा कि मुझे आपकी किसी की जरूरत नहीं है। आम का टोकरा नीचे रखा, नीचे रखा और कहा है भगवान जगन्नाथ ये आपके आम हैं। वो कहते हैं पंडित कहते पर कैसे तो भोग लगाएगा, बिना भोग लगाए वापस ले जाएगा, वो तो जा नहीं सकता भगवान के पास, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है आपकी। उसने क्या किया कि दो आम हाथ में लिए, नील चक्र का ध्यान किया कि भगवान स्वीकार करो ये आपके आम हैं। आम गायब, पंडित साहब देख रहे हैं, दो फिर रखे आम गायब, सारे 40 के 40 आम लेके गए थे, 40 40। अरे ये क्या कोई, ये वो क्या कहते हैं, कोई ये जादू कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो ये? कहते मैं जादू जूदू कुछ नहीं कर रहा, जगन्नाथ जी ने सारे आम स्वीकार कर लिए। कह रहे कि जाओ मंदिर में देखो, मंदिर में गए तो कुठली और छिलके पड़े हुए हैं आमों के, मंदिर भर गया सारा। जगन्नाथ जी ने सब अवाक, कितना बड़ा जगन्नाथ जी की इस पर इतनी कृपा, सब ने बड़ी सराहना की, स्तुति की, उसने सबके चरणों में प्रणाम किया कि बस आप सबकी कृपा से ही ऐसा है। तो एक बार जब वो आए उधर, तो भगवान ने 10 अवतार के रूप में उनको दर्शन दिए। तो मैं आपके अलग अलग स्वरूपों के दर्शन करना चाहता हूं। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, देखो जात का शूद्र, अनपढ़ घमार, जंगली भील, भगवान की कितनी कृपा है। एक बार जब वो घर में थे तो उनका, प्रभु मैं इतना नीच हूं जाति का, मैं मूर्ख हूं, अपने को कोसने लगे। तो भगवान जब प्रकट हुए, भगवान ने कहा देखो दास, जब वो भावुक हो गए थे ना, तो गांव के लोगों ने उनका नाम रख दिया था बलिग्राम दास, बोरिया का नाम रखा बलिग्राम दास, बलिग्राम दास बन गए। वहां पर बड़ा जीवन उनका प्रचलित हो गया। तो वो जब प्रार्थना की तो भगवान ने दर्शन दिए, शंख चक्र गदा पदम धारी, भगवान ने उनको देखो, शंख चक्र गदा पदम धारी और कृष्ण में कोई भेद नहीं, कृष्ण का ही वो दूसरा स्वरूप है, भगवान अनेक रूप धारण करते हैं। तो भगवान जो है कैसे मिलते हैं, किस घटना से हम लोगों ने शिक्षा लेनी है, पहले तो बात ये ध्यान में लाओ। मेरा मन कहता है मेरे जीवन का उद्देश्य है खाना पीना और मजा करना, मेरा मन यही सोचता है ना, लेकिन मेरे जीवन का उद्देश्य यही नहीं है खाना पीना और मजा करना। मेरे जीवन का उद्देश्य है कृष्ण से प्रेम करना, खाना पीना और मजा करना नहीं, श्री कृष्ण से प्रेम करना और श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए से देह का त्याग करना। मेरी ऐसी गति हो जाए कि मैं कृष्ण का ध्यान करते हुए इस शरीर का त्याग करूं। हैं? भगवान ने गीता में 8वें अध्याय में कहा है, यम यम पापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम, तम तमे वेति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। जो जिस जिस भाव से शरीर का त्याग करता है वो उसी भाव को प्राप्त करता है। अगर मेरा ध्यान स्त्री में हुआ या धन में हुआ या अनुयायियों में हुआ, इसलिए महाप्रभु ने मना किया ना, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, और कविताम मुझे बड़ा कवि भी नहीं बनना, बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, ये भी इच्छा है, भौतिक इच्छा है, मैं बड़ा प्रवक्ता बड़ा प्रवचन करने वाला बन जाऊं ताकि बहुत लोग मेरे अनुयायी बन जाएं, तो गड़बड़ होगी। बड़े अनुयायी बना लिए अगर उनका उद्धार नहीं किया, कहा है कि धूर्त गुरु और लोभी चेला नरक में ठेल मठेला। युग में ही तो है, धूर्त गुरु बन गए हैं सारे ही, लेकिन मैं भी धूर्त हूं, लेकिन प्रभुपाद कृपा से मुझे अच्छा बनना है, वैष्णव की कृपा लेकर के मुझे अच्छे बनना है। अगर मैं धूर्त बना रहा तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। अच्छा बना तो सदगति होगी, अगर धूर्त बना रहा तो दुर्गति होगी। तो भगवान ने बड़ी कृपा करके, ये तो देख रहे हैं ठाकुर हमारे गौर नेता है, शिक्षा दे रहे हैं, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, बोलो जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। गौरांग महाप्रभु यही कृष्ण है, यही जगन्नाथ है, स्वयं जगन्नाथ प्रकट होकर हमें शिक्षा दे रहे हैं। क्यों? हम सब उनके हैं, वो हम सबके हैं, हम सबका संबंध उनसे है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, याद रखो मेरे जीवन का उद्देश्य जगन्नाथ स्वामी से प्रेम करना है, ताकि अंत में मैं उनके श्री चरणों का स्मरण कर सकूं, उनके श्री चरणों में मन को लगा सकूं, नहीं तो ये आसान नहीं है कि अंत में हम भगवान का अंते नारायण स्मृति हो सके। भगवान ने यह भी कहा ना, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति निसत यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ श्री त्याग करता है, वो निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। पर याद रखो, अंत का स्मरण इतना आसान नहीं है। मुझे एक बात याद आई, नैरोबी में प्रभुपाद लेक्चर कर रहे थे, एक मिस्टर पटेल जो हैं, वो कहते हैं प्रभुपाद को कि स्वामी जी ये तो दिस इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। प्रभुपाद कहते हैं क्या, इधर जीवन काल में खाओ पियो और मजा करो और अंत में भगवान का नाम ले लो। प्रभुपाद कहते हैं जीवन काल में अगर तो खाने पीने में लगा हुआ है ना, अंत में नहीं भगवान का नाम ले सकता, अंत में वही तुम्हें सामने आएगा जो जीवन काल में किया होगा। खैर, मीटिंग की तैयारी हो रही है, आपको पता मिश्र गोष्ठी है, मैं ज्यादा नहीं आगे बढ़ूंगा, बल्कि अगर किसी को 8:45 समाप्ति पूरी करनी, अभी 5 मिनट है, तो मेरी आप सबसे यही निवेदन है, सभी हरि भक्तों से सभी माताओं से, देखो जो भाव है हम सबके अंदर है, लेकिन मेरे दुष्कर्मों के कारण वो ढक गया है, उसको जागृत करना है। सीधी सी बात है, ब्राह्मण में भी है, क्षत्रिय में भी है, वैश्य में भी है, शूद्र में भी है, पशु पक्षियों के अंदर भी है। जो महाप्रभु ने जागृत किया था वो तो भगवान थे, पशु पक्षियों का भी तो भाव जागृत कर दिया था महाप्रभु ने। वाघ और हिरण गले लग रहे हैं, ऐसे हैं तो वो भी जीव आते हैं बेचारी, लेकिन हम प्रभुपाद कहते थे भगवान ने तो पशु पक्षियों का भी भाव जागृत किया था, पर हम कम से कम मनुष्यों का भाव जागृत करने में निमित्त बन सकते हैं। तो हम लोगों को जो है स्वयं अपना भाव जागृत करना है। प्रभुपाद ने सारी दुनिया के लोगों का भाव जागृत कर दिया है, जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था उनको कृष्ण भक्त बना दिया, ये इनकी कृपा है। इनके श्री चरणों को पकड़ के रखो, ये आपको भगवान से मिला देंगे। और मैं आगे ना बढ़ता हुआ, जगन्नाथ भगवान, बलदेव भगवान, सुभद्रा माता के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि हम सबको आप भी साथ में मेरे, मैं भी है, मैं भी साथ चलूं नहीं आपके, नहीं, हम सबको भाव का दान दें। मेरे मन में जो गंदगी है विषय वासनाओं के प्रति, खाने पीने के प्रति, वो गंदगी निकल जाए और मेरे मन में सब केवल जगन्नाथ जी के श्री चरणों में प्रेम जागृत हो जाए। जगन्नाथ कृपा से जैसे दस बौरिया का भाव उनकी कृपा से जागृत हो गया, मेरा भी भाव जागृत हो जाए और फिर जब मेरा अंतिम समय आए तो मैं जगन्नाथ जी का स्मरण करता हुआ देह का त्याग करूं। बोलो जगन्नाथ स्वामी की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की।